कुछ समाचारों में प्रधानमंत्री ने दिया मेलकम टर्नबुल द्वारा लिबरल पार्टी के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों के खतरे की टिप्पणियों का जवाब। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड 19 महामारी से मरने वालों की संख्या 15 मिलियन के करीब। और भारत में आज खुले केदारनाथ धाम के दरवाजे। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वो उदारवादी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा लिबरल पार्टी के लिए खतरे के बारे में पूर्व लिबरल प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल की टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं। श्री टर्नबुल ने अपनी टिप्पणियों को स्पष्ट किया है, जो उन्होंने वाशिंगटन DC में एक भाषण में कहा था। उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट देने के लिए ऑस्ट्रेलियन लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि उम्मीदवारों का विकल्प होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। श्री मॉरिसन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं और वो और अधिक सुरक्षा खर्च की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने निर्दलियों के खिलाफ ये कहते हुए अपना हमला जारी रखा कि वो सरकार में अराजकता पैदा करेंगे।
I don't share his view. What my view is I've just explained to you, and that is the chaos of a parliament driven by the daily musings of independents who haven't had the experience to deal with the serious security and economic challenges our country faces. That is going to hurt people's incomes. It's going to hurt people's jobs. It's going to damage Australian security.
लेबर ने सरकार द्वारा वित्त पोषित पेरेंटल लीव के दौरान महिलाओं की सुपरन्यूएशन भुगतान करने की अपनी नीति को अब छोड़ दिया है। ये वो एक वादा है जो उन्होंने पिछले चुनावों में किया था। ये स्पष्ट नहीं है कि पार्टी हाल ही में यानी पिछले साल इसे बढ़ावा देने के बाद इस नीति के लिए प्रतिबद्ध होगी या नहीं। पेरेंटल लीव के दौरान सुपर भुगतान करना 2020 में जारी एक सेवानिवृत्ति आय समीक्षा की एक प्रमुख सिफारिश थी। समीक्षा में पाया गया था कि बच्चों के साथ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत कम सेवानिवृत्ति बचत मिली। लेबर लीडर एंथनी एल्बनीसी ने भविष्य में इस उपाय को फिर से शुरू करने से इनकार भी नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि 2019 में किए गए सभी वादों को इस अभियान में नहीं लाया जा सकता है।
We're being very measured. Would this be a good thing to do? Yes, it would be. It is something that we'll examine in government, but in a range of areas. What we're doing is being responsible.
गठबंधन ने भी सरकार द्वारा वित्त पोषित पेरेंटल लीव के दौरान सुपरन्यूएशन को फंड करने के लिए प्रतिबद्ध होने से इनकार किया है। एक नए सर्वेक्षण से इंगित होता है कि आगामी फेडरल चुनाव में रहन सहन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग मतदाताओं की मुख्य चिंता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा 3,500 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 64.7% लोगों ने सोचा कि आने वाली सरकार के लिए रहन सहन की उच्च लागत सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अध्ययन के सहलेखक निकोलस बिडल ने SBS न्यूज को बताया कि इस विचार को राजनीतिक स्पेक्ट्रम में साझा किया गया था, जिसे लेबर और गठबंधन के मतदाताओं ने माना और साथ ही उन लोगों ने भी जो किसी भी पार्टी का समर्थन करने का विचार नहीं रखते थे।
That result also kind of reflects some of our other data, which shows that people are more likely now than they were at any time during the COVID period to think that their income was not meeting their expenditure, their prices are going to go up then go down, and they're more likely also to think that rising prices are a real issue for Australia. So cost of living very much front of mind and very predictive of people's voting intentions.
विक्टोरिया की एबोरिजिनल अफेयर्स मंत्री ने राज्य के इंडिजिनस ट्रुथ टेलिंग कमीशन को बताया है कि उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में आदिवासी समुदाय से विश्वास बनाने में समय लगेगा। गैब्रियल विलियम्स ने यूरोप जस्टिस कमीशन को सबूत दिए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का पहला सच बोलने वाला यानी ट्रुथ टेलिंग आयोग है। ये निकाय कॉलोनाइजेशन की शुरुआत के बाद से स्वदेशी अनुभवों का एक आधिकारिक सार्वजनिक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सुनवाई कर रहा है, जिससे विक्टोरिया की संधि वार्ता का मार्गदर्शन हो सके। ये पूछे जाने पर कि वो कैसे सुनिश्चित करेंगी कि जांच की सिफारिशें सिर्फ शेल्फ पर ही धूल इकट्ठा होने के लिए नहीं रह जाएंगी, मंत्री गैब्रियल विलियम्स ने आयोग को बताया कि उनकी सरकार प्रक्रिया और उसके परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है।
I'm not sure that anything I can say today or at any other point in time can fully allay the suspicions or fears or concerns of community and because they are reasonably held. And as I was outlining before, you know, there is a lot of trust to make up. There is, you know, 200 years of betrayal and that is a lot of hurt and pain.
New South Wales में हजारों स्कूली छात्रों ने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के विरोध में एक दिन का स्कूल छोड़ा है। छात्र आने वाली फेडरल सरकार से 2030 तक कोई नई कोयला, तेल या गैस परियोजनाओं, 100% नवीनीकरण ऊर्जा और निर्यात के लिए प्रतिबद्ध नहीं होने और जीवाश्म ईंधन वर्कर्स और समुदायों के लिए एक उचित रास्ता खोजने के लिए कह रहे हैं। आज मक्वेरी स्ट्रीट पर लिबरल पार्टी मुख्यालय तक मार्च करने से पहले सिडनी टाउन हॉल में दोपहर पर भीड़ शुरू हुई। स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर नताशा अभय विक्रामा का कहना है कि जलवायु संकट पर मॉरिसन सरकार की निष्क्रियता से युवा नाराज और निराश हैं।
We know that fossil fuels are the direct cause of the climate crisis. Yet the Morrison government, they give $20,000 a minute to the fossil fuel industry, and but with doing that, they're throwing away our futures, and they know the consequences of this. And young people are just angry and disappointed. And we're here to say we have an election coming up on May 21st, and we're here to tell them that our communities are voting for climate, and we're also here to, you know, plead with voters to vote for our futures.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों का कहना है कि COVID-19 महामारी से मरने वालों की सही संख्या 15 मिलियन के करीब है। ये आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 6 मिलियन से 2 गुना से अधिक है। आंकड़ों में कोरोना वायरस द्वारा सीधे तौर पर मृत्यु लोग या स्वास्थ्य प्रणालियों पर महामारी के प्रभाव से मृत्यु लोग शामिल हैं, जैसे कि उन स्थितियों के साथ जो इलाज की तलाश में असमर्थ थे जब अस्पतालों में COVID-19 रोगियों की बाढ़ आ गई थी। WHO के डेटा एनालिस्टिक और डिलीवरी फॉर इम्पैक्ट के लिए सहायक महानिदेशक समीरा अस्मा का कहना है कि संख्या अनुमानों पर आधारित है और कभी कभी विवादास्पद हो सकती है।
Numbers are all sometimes controversial. We have to recognize that the estimates are an approximation of a reality. As you also heard, that there is variability in data availability, and it has become very obvious during the entire course of the pandemic. There have been data that is missing or unknown. There has been delays in reporting, and basically all of us were caught unprepared.
भारत में एक बड़े चक्रवाती तूफान का खतरा है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 8 मई तक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा और इसके बाद इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इस तूफान का असर पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, उत्तर पूर्व के राज्यों पर पड़ सकता है। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 48 घंटे में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और भारत में केदारनाथ धाम के दरवाजे आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर वहां मौजूद थे। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने कराया था। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 54.44 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया मटिल्डा के कप्तान सैम कर को फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। महिला सुपर लीग में चेल्सी के साथ खेलने वाली कर ने ये पुरस्कार एक उत्कृष्ट सत्र में सबसे ऊपर है। चेल्सी को लीग तालिका में शीर्ष पर पहुंचाने में कर के सीजन के लिए 18 गोल शामिल हैं। उन्हें 40% वोट मिले। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन पहली बार पूर्ण सदस्यता के लिए खुला था। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह ने दूसरी बार पुरुषों का पुरस्कार जीता। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री। एडिलेड में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में बौछारें, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। कैनबरा में सुबह के समय धुंध, आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 1 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।